ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने देश में एकता, सामाजिक सद्भाव और सहिष्णुता बनाए रखने पर दिया जोर। वाणिज्य विभाग ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के जरिए बेचे जा रहे 100 से अधिक संदिग्ध नकली उत्पाद किए जब्त। और इंडोनेशिया के मदुरा द्वीप के पास नाव में आग लगने से कम 5 लोगों की हुई मौत, 41 लापता। अब समाचार विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने पर जोर दिया। आज ललितपुर में तुलसीलाल अमात्य की 29वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने एकता, सामाजिक सद्भाव और सहिष्णुता बनाए रखने पर जोर दिया। पूर्व राष्ट्रपति भंडारी ने कहा कि नैतिकता, सुशासन और जन जवाबदेही को सुदृढ़ बनाने के लिए वरिष्ठ नेताओं के आदर्शों को अपनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि तुलसीलाल अमात्य का त्याग, ईमानदारी और जनसेवा आज भी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। पूर्व राष्ट्रपति ने सुनसरी सहित पूर्वी तराई के कुछ जिलों में हाल की हिंसक घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने सभी से संयम बरतने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की, साथ ही अफवाह और नफरत फैलाने वाले प्रयासों से दूर रहने का आग्रह भी किया। सिरहा के गोल बाजार क्षेत्र से कर्फ्यू हटा लिया गया है। जिला प्रशासन कार्यालय ने आज जारी सूचना में कहा कि स्थानीय सुरक्षा स्थिति में सुधार के बाद आज शाम 7 बजे से कर्फ्यू हटाने का निर्णय लिया गया है। प्रमुख जिलाधिकारी सुरेंद्र पौड़ेल के अनुसार पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में तनाव और सुरक्षा चुनौती को देखते हुए कर्फ्यू लगाया गया था। प्रशासन ने लोगों से शांति और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की है। सप्तरी में राजबिराज और बोधे बरसाइन नगर पालिकाओं में कर्फ्यू हटा लिया गया है। उसकी जगह अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। जिला प्रशासन कार्यालय के अनुसार जिला सुरक्षा समिति की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। निषेधाज्ञा के दौरान दोनों नगर पालिकाओं में 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने, सभा जुलूस, धरना और प्रदर्शन पर रोक रहेगी। प्रशासन ने लोगों से निषेधाज्ञा का पालन करने, शांति और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने और प्रशासन के निर्णय में सहयोग करने की अपील की है। धनुषा जिला प्रशासन द्वारा कर्फ्यू हटाकर निषेधाज्ञा लागू किए जाने के बाद रेल सेवा बहाल की गई है। नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड ने बताया कि जनकपुर जयनगर भंगहा रेलखंड पर ट्रेनों का संचालन सामान्य रूप से शुरू हो गया है। जनकपुर जयनगर बिजलपुरा ब्रॉडगेज रेल सेवा नेपाल की एकमात्र अंतर्देशीय रेल सेवा है। ये 51 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर संचालित होती है। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 100 से अधिक संदिग्ध नकली उत्पादों को नियंत्रण में लिया है। विभाग की निगरानी टीम ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के जरिए बेचे जा रहे मसाज तेल, शैम्पू, चाय, खाद्य पूरक आहार सहित दैनिक उपयोग की कई वस्तुएं जब्त की हैं। विभाग ने बताया कि इन उत्पादों की गुणवत्ता, वास्तविकता और उपभोग योग्य होने या न होने की जांच की जा रही है। विभाग ने महानिदेशक मोतीराम सापकोटा ने कहा कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा के लिए बाजार निगरानी को तेज किया गया है। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित उत्पादों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने उपभोक्ताओं से बाजार में संदिग्ध या नकली उत्पाद मिलने पर जानकारी देने का आग्रह किया है। नेपाल सरकार ने दुनिया की 12वीं सबसे ऊंची चोटी ब्रॉड पीक के आरोहण के दौरान हिमस्खलन में पर्वतारोहियों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। परराष्ट्र मंत्रालय ने आज जारी बयान में कहा कि इस दुर्घटना में प्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल पुर्जा निम्सदाई सहित नेपाली पर्वतारोहियों पूर्व बहादुर गुरुंग, किली पेम्बा शेर्पा, नीमा शेर्पा, नवांग थिंडू शेर्पा और ग्यालू शेर्पा की दुखद मृत्यु से पर्वतारोहण क्षेत्र को अपूरणीय क्षति हुई है। मंत्रालय के अनुसार नेपाली पर्वतारोहियों के दल के लापता होने की जानकारी मिलते ही पाकिस्तानी और नेपाली टीमों ने खोज तथा बचाव अभियान तेज कर दिया था। मंत्रालय ने ऊंचे हिमालयी क्षेत्र में कठिन खोज अभियान में शामिल नेपाली और पाकिस्तानी पर्वतारोहियों के साहसिक प्रयासों की सराहना की है। नेपाल सरकार ने बताया कि पर्वतारोहियों के शवों को स्वदेश लाने के लिए इस्लामाबाद स्थित नेपाली दूतावास के माध्यम से आवश्यक समन्वय किया जा रहा है। परराष्ट्र मंत्रालय ने दिवंगत पर्वतारोहियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। लगातार हुई बारिश के बाद आए भूस्खलन के कारण मुगू के पीना बाले गमगढ़ी सड़क खंड पिछले दो सप्ताह से अवरुद्ध है, जिससे करीब एक दर्जन गांवों के लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश के दौरान पैदल मार्ग भी कीचड़युक्त और जोखिमपूर्ण हो गए हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार दैनिक कामकाज, व्यापारिक गतिविधियों और आवश्यक सेवाओं पर भी इसका असर पड़ा है। सड़क अवरुद्ध होने से जिला मुख्यालय आने जाने, दैनिक उपभोग की वस्तुओं की ढुलाई करने और मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने में भी कठिनाई हो रही है। डडेलधुरा की अजय मेरू गांवपालिका 2 के 7 अव्यवस्थित बसोबासी परिवारों को भूमि स्वामित्व प्रमाण पुर्जा यानी लाल पुर्जा वितरित किया गया है। जिला भूमि समस्या समाधान समिति ने अजय मेरू 2 के 7 अव्यवस्थित बसोबासी परिवारों को लाल पुर्जा वितरण किया है। अजय मेरू गांवपालिका के अध्यक्ष उमेश प्रसाद भट्ट ने इसकी जानकारी दी। बागमती प्रदेश के काठमांडू घाटी को छोड़कर 10 जिलों के 91 स्थान सड़क दुर्घटना के लिहाज से जोखिमपूर्ण पाए गए हैं। नेपाल पुलिस के राजमार्ग सुरक्षा तथा यातायात प्रबंधन कार्यालय रामनगर चितवन द्वारा सार्वजनिक किए गए 3 वर्षीय आंकड़ों के अनुसार बागमती प्रदेश में वाहन दुर्घटना गंभीर सुरक्षा चुनौती के रूप में सामने आई है। भौगोलिक दृष्टि से चितवन, धादिंग और मकवानपुर जिले दुर्घटनाओं के लिए अत्यधिक संवेदनशील माने गए हैं। प्रदेश भर में मौजूद 91 जोखिमयुक्त ब्लैक स्पॉट में से चितवन में 17, धादिंग में 16, सिंधुली में 14 और मकवानपुर में 12 स्थान शामिल हैं। इसी तरह कावरे पलानचौक में 11, नुआकोट में 8, रसुआ और रामेछाप में 4-4, सिंधु पालचौक में 3 तथा दोलखा में 2 स्थान दुर्घटना के लिहाज से जोखिमपूर्ण पाए गए हैं। कार्यालय प्रमुख एसपी दिल्ली नारायण पांडे के अनुसार ऐसे स्थानों को जोखिमयुक्त क्षेत्र माना गया है जहां दुर्घटनाओं में 5 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। पिछले 3 आर्थिक वर्षों में हुए 5,872 वाहन दुर्घटनाओं में 959 लोगों की मौत हुई है, जबकि 11,699 लोग घायल हुए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इंडोनेशिया के मदुरा द्वीप के पास समुद्र में एक यात्री नाव में भीषण आग लग गई। इस हादसे में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। ये नाव पूर्वी जावा प्रांत के सुराबाया से दक्षिण सुलावेसी के मकासर शहर जा रही थी। यात्रा शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही इसमें आग लग गई। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार घटना के समय नाव में 271 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। बचाव अभियान के दौरान 225 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में फेरी से काला धुआं निकलता दिखाई दे रहा है। बचाव कार्य के लिए कई जहाजों को लगाया गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने देश में एकता, सामाजिक सद्भाव और सहिष्णुता बनाए रखने पर दिया जोर। वाणिज्य विभाग ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के जरिए बेचे जा रहे 100 से अधिक संदिग्ध नकली उत्पाद किए जब्त और इंडोनेशिया के मदुरा द्वीप के पास नाव में आग लगने से कम 5 लोगों की हुई मौत, 41 लापता। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।